वहीं दूसरी तरफ माहिरा के जाने के बाद आरव तैयार हो गया था। वो नीचे पहुंचा तो सब उसका ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट कर रहे थे। माहिरा वहां नहीं थी तो आरव समझ गया कि वो वहां से चली गई है। कबीर भी जिस काम से आया था वो हो गया था, इस वजह से वो भी चला गया। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ आरव, गौरवी जी और आर्या ही थे। आरव ने देखा आर्या का ब्रेकफास्ट उसके टेबल पर वैसे ही पड़ा हुआ था। वो जानता था कि जब तक आरव उसे नहीं खिलाएगा वो नहीं खाने वाला है। आरव ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। आर्या के पास आते ही आरव ने उसे गोद में बिठा लिया था। हालांकि ज्यादातर उसे ये करना पसंद नहीं था, लेकिन जब माहिरा ने ये कहा कि आर्या को फ्यूचर में उसकी मॉम की जरूरत पड़ेगी तो आरव उसे कुछ ज्यादा ही प्यार जता रहा था। वो नहीं चाहता था कि आगे किसी भी तरीके से आर्या को अपनी मॉम की कमी महसूस करे। आरव चुपचाप आर्या को खाना खिला रहा था तभी गौरवी जी ने कहा, आज कुछ चमत्कार हुआ है क्या? हमेशा ये जिद करता है तब भी तुम इससे यही कहते हो कि खुद से खाना खाओ, और आज इतना प्यार जताया जा रहा है? हाँ, क्योंकि इसका हक बनता है। इसके लिए इसकी मॉम और डैड दोनों मैं ही हूँ, तो आज से इसका हर छोटा काम मैं बिना किसी शिकायत के करूँगा, आरव ने गौरवी जी की तरफ देखकर जवाब दिया। वहीं उसके मुँह से मॉम शब्द सुनकर आर्या का मुँह खाते हुए रुक गया था। आरव ने आर्या की तरफ देखा, वो कुछ खा नहीं रहा था, तो आरव ने सिर हिलाकर कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? जब मैं सब कुछ खुद से कर रहा हूँ तो तुम नखरे दिखा रहे हो? आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? अभी आपने कहा कि आप मेरे मॉम और डैड दोनों हो, तो प्यार से बात कीजिए ना। मेरी मॉम होती तो वो मुझ पर इस तरह छोटी छोटी बातों पर नहीं चिल्लाती, आर्या ने तेज आवाज में कहा और आरव की गोद से उतरकर चला गया था। आरव ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन अपनी मॉम का जिक्र आने पर आर्या इमोशनल हो रहा था। उसके जाते ही आरव ने गौरवी जी की तरफ देखकर बेपरवाही से कहा, इसे ये नहीं पता कि इसकी मॉम यहाँ होती तो वो इसे इससे भी छोटी बात के लिए डांटने लग जाती, और इससे पहले बच्चों की तरह उसके आंसू निकल आते। बोलते हुए को आरव ने महसूस किया गौरवी जी चुप थीं। आरव ने उनकी तरफ देखकर हैरानी से पूछा, अब आपको क्या हुआ? गौरवी जी ने जवाब में कहा, तुमने कुछ नोटिस किया? नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। उसे अपनी मॉम की कमी महसूस होती है, तभी तुम्हारे ये कहने पर कि उसकी मॉम और डैड तुम ही हो वो इमोशनल हो गया। तुम्हें समझना होगा आरव, तुम्हारी लाइफ में छवि की कमी मैं पूरी नहीं कर पाई थी, जबकि मैंने तुम्हें अपनी तरफ से पूरा प्यार दिया था। वैसे ही तुम्हें आर्या का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना होगा। चाहे साक्षी हो, मैं हूँ, तारा हो या सिमरन हो या युवानी, सब इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसे अपनी मॉम चाहिए। दादी, इसकी मॉम कोई दरवाजे पर नहीं खड़ी है जो मैं उसे अंदर ले आऊं। मुझे खुद नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है, आरव ने चिढ़कर जवाब दिया। पहले आरव आयु का जिक्र भी नहीं करता था, लेकिन आज पहली बार इतने दिनों में उसने कुछ रिस्पांस दिया था। गौरवी जी ने गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम उसे माफ करने के लिए तैयार हो? अब तक तुम उसे आर्या की मौत का जिम्मेदार समझते थे, क्या आर्या के लिए तुम सब कुछ भूल कर उसे वापस हमारी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? तो मैं जय और तारा से बात करती हूँ, शायद उन्हें पता हो कि आयु कहाँ है। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और जवाब में कहा, नहीं, वो नहीं जानते। मैंने उन्हें कॉल किया था, जब से उन्हें पता चला है कि आयु की वजह से अनु की जान गई है वो उससे नफरत करने लगे हैं। दादी प्लीज, आप आर्या के सामने आयु का जिक्र मत किया कीजिए, गलती से भी उसने सुन लिया तो वो और परेशान हो जाएगा। गौरवी जी और आरव बात कर रहे थे तभी रूम की ओट में छुपकर आर्या उन्हें सुन रहा था। वो अपनी मॉम का नाम जानता था लेकिन आर्या का नाम उसके लिए नया था। आर्या धीरे से बोला, आयु मतलब मॉम, पर आर्या कौन है? अयान चाचू, सिर्फ वही मुझे इसके बारे में बता सकते हैं, और कैसे भी करके मुझे उनके साथ स्कूल जाना होगा। आर्या जल्दी से कमरे में गया और उसने उसी वक्त अयान को कॉल किया। अयान को हॉस्पिटल के लिए निकलना था, लेकिन फिर भी आर्या का कॉल देखकर उसने रिसीव करके पूछा, क्या हुआ बेबी? आपके डैड ने आपको फिर से डांटा जो आप मुझे कॉल कर रहे हो? चाचू, मुझे स्कूल जाना है, क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगे? मुझे डैड के साथ नहीं जाना, आर्या ने जल्दी से कहा। अयान ने घड़ी में टाइम देखा तो वो पहले से ही लेट था और इस वक्त गाड़ी में ही था। उसने जवाब कहा, मैं कुराना मेंशन के आसपास ही हूँ, बस 10 मिनट में पहुँचता हूँ, आप बस तैयार रहना। अयान से बात करने के बाद आर्या ने कॉल कट कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद अयान आ गया था। ब्रेकफास्ट के बाद आरव आर्या को बुलाने के लिए जा ही रहा था, लेकिन अचानक अयान को वहाँ देखकर उसने पूछा, तुम्हें तो इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अयान कुछ कहता उससे पहले आर्या बैग के साथ बाहर आ गया था। उसने आरव की बात का जवाब देते हुए कहा, चाचू को कॉल मैंने किया था और मैं इनके साथ स्कूल जा रहा हूँ। आर्या ने इतना ही कहा और अयान के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब तक आरव ने गौरवी जी की बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब आर्या का बर्ताव देखकर उसे गौरवी जी की बातें सच लगने लगी। आरव के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन देखकर अयान ने कहा, आई होप यहाँ पर सब ठीक हो। मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं आर्या को लेकर जा रहा हूँ। आरव ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। आर्या अयान के साथ स्कूल के लिए निकल गया। वहीं आरव ने गौरवी जी की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, मेरे लिए उसे माफ करना मुश्किल है दादी, उसे कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ। मेरे इतने प्यार करने के बावजूद उसे मुझसे ज्यादा दूसरों पर यकीन होता था। मैंने उसकी हर गलती को माफ किया, लेकिन उसकी वजह से मेरी बेटी की जान गई है। मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये तो हम खुशकिस्मत है जो आर्या बच गया। तो क्या अब तुम उससे प्यार नहीं करते? गौरवी जी ने हैरानी से पूछा। जैसे मैं उसे गलतियां करने से नहीं रोक सकता था, वैसे ही यहाँ खुद को उससे प्यार करने से नहीं रोक सकता। मुझे पहले लगता था कि वो उस साइकोपैथ के साथ है जिसने बच्चों को किडनैप किया था, लेकिन कल रात ही मैं उससे मिला था और उसने बताया कि आयु वहां से जा चुकी है। मुझे नहीं पता वो कहां है, लेकिन जहां भी होगी अपने बेटे के लिए मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा। आरव ने जवाब दिया और वहां से चला गया। आरव का आयु को ढूंढने की बात सुनकर गौरवी जी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। अपने बच्चों के लिए ही सही वो आयु को फिर से अपनी जिंदगी में लाना चाहता था।